नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए वीकेंड पॉडकास्ट में सियासी किस्सा। जब बोस ने नेहरू से पूछा, आखिर आप हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस आमतौर पर बहुत बड़ी चिट्ठी नहीं लिखते थे। फिर जब ये चिट्ठी नेहरू के लिए लिखी गई हो तो थोड़ी और छोटी हो जाया करती थी। कई बार तो नेहरू बोस को चार चार चिट्ठियाँ लिखते, तब जाकर बोस जवाब में नेहरू को एक चिट्ठी भेजते, वो भी चार लाइन की। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 28 मार्च 1939 को जब बोस नेहरू को चिट्ठी लिखने बैठे तो लिखते ही गए। जब ये चिट्ठी प्रिंट हुई तो उन दिनों इसके लिए कुल 27 पन्ने खर्च हो गए। ये जानना और दिलचस्प है कि इस दिन बोस ने नेहरू की चिट्ठियों के जवाब नहीं लिखे, उल्टे तमाम सवाल और दाग दिए। बोस ने पत्र की शुरुआत ही कुछ ऐसी की थी, मेरे प्रिय जवाहर, मुझे लग रहा है कुछ समय से आप मुझसे खासे नाराज हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे विरुद्ध सभी मुद्दों को बहुत उत्साहपूर्वक उठाया है। जो बातें मेरे पक्ष में हो सकती थी उनकी आपने उपेक्षा की है। मेरे राजनीतिक विरोधी मेरे विरुद्ध जो कुछ कहते हैं आप मान लेते हैं, जबकि उनके विरुद्ध जो कुछ कहा जा सकता है उससे आंखें मूंद लेते हैं। आगे मैं उपयुक्त बातों पर विस्तृत चर्चा करूंगा। बोस आगे लिखते हैं, आप मुझे अचानक नापसंद क्यों करने लगे? मेरे लिए ये एक रहस्य बना हुआ है। जब से मैं 1937 में नज़रबंदी से बाहर आया हूँ, तभी से आपको व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक सम्मान और इज्जत की दृष्टि से देखता रहा हूँ। राजनीति के क्षेत्र में मैंने आपको सदा बड़ा भाई और नेता माना है। समय समय पर आपसे सलाह भी लेता रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तों के बारे में आज कई तरह की बातें और राय हैं, लेकिन ऊपर लिखी बातों से स्पष्ट है कि वो दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। बोस ने तो नेहरू को अपना बड़ा भाई तक बताया है। वहीं दूसरी ओर नेहरू और बोस के बीच उलझने भी कम नहीं दिखती हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि स्वराज के लिए साथ लड़ने वाले दो मुख्य स्तंभों के बीच दूरियाँ कैसे आईं। साल 1936 के आसपास के दिनों में सुभाष चंद्र बोस नेहरू से काफ़ी प्रभावित थे। वो 4 मार्च 1936 को नेहरू को एक पत्र में लिखते हैं, आज के मुख्य नेताओं में से आप ही एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। उन दिनों कांग्रेस को स्वराज और आज़ादी के आंदोलन का स्कूल माना जाता था। नेहरू और बोस इस स्कूल के सबसे अच्छे टीचर्स नज़र आते हैं। ये वही दिन थे जब बोस नेहरू की देश विदेश समझ से भी काफ़ी प्रभावित थे। इसके कुछ समय बाद ही बोस को ब्रिटिश सरकार ने नज़रबंद कर दिया। फिर वो 1937 में बाहर आए, तब भी उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करने वाले व्यक्ति नेहरू ही थे। इन दिनों नेहरू और बोस के बीच रिश्तों में गजब का ठहराव दिखता है, लेकिन ना तो ये समय ठहरा और ना ही रिश्तों में ये ठहराव ही बरकरार रह सका। घड़ी की सुई तेजी से घूमी, पहले सीधी और फिर उल्टी, यानी पहले पार्टी में बोस का कद तेजी से बढ़ा। अपनी लोकप्रियता को बढ़ता देख उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये फैसला उनके पक्ष में गया और वो चुनाव जीत गए, लेकिन चुनाव के दौरान बोस का प्रचार करने का तरीका, उनके भाषण में प्रयोग किए जा रहे शब्द सभी नेहरू को नागवार गुजर रहे थे। बतौर कांग्रेस अध्यक्ष बोस का कामकाज भी नेहरू को बहुत रास नहीं आया। खासकर बोस का पार्टी के मुद्दों को कार्यकारिणी के बीच ना हल करके उन विषयों पर बाहर वक्तव्य देना। नेहरू ने बोस को इसके लिए कहा कि वो इस दौरान पार्टी अध्यक्ष से ज़्यादा पार्टी प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे थे। इन तलखियों के पीछे कई और वजह भी रही। इनमें प्रमुख रही दोनों का एक दूसरे को ठीक तरह से ना समझ पाना। इसका हल निकालने के लिए नेहरू ने बोस को पत्र भी लिखा। उनका मानना था कि वो अगर इसी तरह एक दूसरे के उद्देश्यों और कार्यों के प्रति शंका और दुराग्रह से भरे रहेंगे तो भविष्य का निर्माण कर पाना कठिन हो जाएगा। वो चाहते थे कि इसके हल के लिए दोनों लोगों को एक दूसरे की विचारधारा को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। उन्हें लगता था कि ऐसा करने के लिए आपस में लंबी बातचीत बहुत ज़रूरी है, पर अफसोस ये हो ना सका। बोस को लगता था कि नेहरू से मुलाकात करके भी बहुत हल नहीं निकल सकते। उन्होंने पिछली मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा, पिछले वर्ष जब आप यूरोप से वापस आए तो मैं इलाहाबाद आकर आपसे मिला और आपसे पूछा था कि आप हमारा नेतृत्व किस प्रकार करेंगे। जब भी इस दृष्टि से मैंने आपसे बात की तो आपके उत्तर अस्पष्ट और गैर जिम्मेदाराना थे। उदाहरण के तौर पर, पिछले वर्ष जब आप यूरोप से लौटे आपने मुझे ये कहकर चुप करा दिया कि मुझे गांधी जी से परामर्श करना चाहिए, फिर भी मैं आपसे बात करूं। गांधी जी से आपकी मुलाकात के बाद जब हम वर्धा में मिले तो आपने निश्चित तौर पर मुझे कुछ नहीं बताया। बाद में कार्यकारिणी के सम्मुख कुछ प्रस्ताव रखे जो ना तो नए थे और ना ही देश को कोई दिशा देने वाले थे। जब बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे वो उन्हीं दिनों बीमार पड़ गए। इससे पार्टी का कामकाज तो प्रभावित हुआ ही, पार्टी के सदस्यों में भी उनके प्रति कुछ नाराजगी आ गई। ये नाराजगी आगे बढ़ती ही गई। नतीजा ये हुआ कि एक साथ 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इस बाबत बोस ने नेहरू को लिखा, मैं आपको बता दूं कि अध्यक्ष के चुनाव के बाद से आपने लोगों में मेरी इज्जत को इतना कम कर दिया है कि जितना त्यागपत्र देने वाले 12 सदस्य भी नहीं कर पाए थे। यदि मैं इतना बड़ा खलनायक हूं तो ये आपका अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य है कि जनता के समक्ष मेरी असलियत पेश करें। पर शायद आपको ये ध्यान आ जाए कि ये शैतान इतने बड़े नेताओं, जिनमें आप और महात्मा गांधी और प्रांतीय सरकारें भी शामिल हैं, के विरोध के बावजूद पुनः चुनाव जीत गया। आखिर कुछ बात तो रही होगी, उसने अपने अध्यक्ष काल में देश की कुछ तो सेवा की होगी, तभी तो वो बिना किसी संगठन की सहायता और अनेक विरोधों के बावजूद इतने वोट हासिल कर सका। ये सच है कि नेहरू नहीं चाहते थे कि बोस फिर से चुनाव लड़ें, क्योंकि उनको बोस से अपनी नाराजगी थी। वो सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षीय बयानों से कार्यकारिणी पर पड़ने वाले प्रभावों से बहुत खफा थे, साथ ही उन्हें बोस के भाषणों में लेफ्ट राइट जैसे शब्दों का प्रयोग बहुत अखरता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि बोस इन शब्दों का सही प्रयोग नहीं जानते हैं और इससे भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है। लेकिन बोस को लगता था कि नेहरू खुद तो इन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, उन पर रोक लगाते हैं। इस विषय पर दोनों में अक्सर मतभेद बना रहा, जिसे बोस ने नेहरू को लिखी अपनी चिट्ठी में भी दर्ज किया। क्या आप आचार्य कृपलानी और स्वयं अपने द्वारा हरिपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष पेश की जाने वाली रिपोर्ट को भूल गए हैं? क्या आपने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं कहा था कि उदारवादी वाम वर्गियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या महज आपको ही ये सुविधा प्राप्त है कि जहां आवश्यकता हो वहां आप वाम वर्गीय और उदारवादी शब्दों का प्रयोग कर लें? तो क्या अन्य लोगों को इन शब्दों के प्रयोग की इजाज़त नहीं? कुछ अपवादों को छोड़ दें तो नेहरू की कूटनीतिक समझ बहुत व्यापक नजर आती है। प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम सरदार पटेल से आगे करने का कारण भी उनकी बेहतरीन विदेश समझ को ही माना जाता है। वजह थी उनमें खुले विचार और संभाव का होना, लेकिन जर्मन तानाशाह हिटलर जैसे व्यक्ति को प्रभावित करने वाले बोस को उनकी विदेश समझ बेहद अस्पष्ट लगती थी। वो इस बात से खासा नाराज हो गए थे कि नेहरू ने यहूदियों को शरण देने का समर्थन किया। उन्हें लगता था कि यहूदियों को भारत में शरण देना सही नहीं। बोस अपने पत्र में इस बात का जिक्र करते हुए नेहरू को लिखते हैं, संवेदनशीलता और नैतिकता से विदेश नीति निर्धारित नहीं होती, हर समय पिछली बातों को उठाते रहना उचित नहीं, जर्मनी और इटली जैसे देशों की भर्त्सना करते रहना भी उचित नहीं, ब्रिटेन और फ्रेंच उपनिवेशवाद को अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र देना भी आवश्यक नहीं। नेहरू को ये कभी पसंद नहीं रहा कि उन्हें सिर्फ एक पार्टी या गुट से जोड़कर देखा जाए, वो सबके होना चाहते थे। इसी दृष्टि के चलते वो एक समानांतर दुनिया बनाने में भी कामयाब रहे। लेकिन बोस को ये बात बहुत अखरती थी। उन्होंने लिखा, आपको ये घोषणा करते रहने की आदत है कि आप अलग थलग हैं और आप किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते और ना ही आप किसी पार्टी से संबंध है। प्रायः इस बात को ऐसे दोहराते हैं जैसे कि आपको इस बात पर अभिमान है या फिर आप इससे बहुत प्रसन्न हैं। कभी आप स्वयं को समाजवादी, कट्टर समाजवादी कहते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि एक समाजवादी किस प्रकार व्यक्तिवादी हो सकता है, जैसा कि आप प्रायः घोषणा किया करते हैं। दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। गुट निरपेक्षवादी होने का लेबल लगाकर व्यक्ति सब गुटों में प्रसिद्धि तो पा सकता है, किंतु उसकी कीमत क्या है? बोस को लगता था कि किसी भी देश का समाजवाद बिना किसी पार्टी या संगठन से संबंध हुए पनप ही नहीं सकता। वो इन्हीं सब बातों को लेकर इतना उलझ जाते हैं कि पत्र समाप्त करते करते सवाल करते हैं, अब मैं आपसे कहूँगा कि कृपया आप अपनी नीति और कार्यक्रम स्पष्ट करें, अस्पष्ट सामान्य नीतियां नहीं बल्कि स्पष्ट, सत्य और विस्तृत। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि वास्तव में आप क्या हैं, समाजवादी, वामपंथी, केंद्रवादी, उदारवादी, गांधीवादी या कुछ और। ये सभी प्रसंग प्रकाशन विभाग के संकलित किए गए नेताजी के भाषणों, लेखों, पत्रों से लिए गए हैं और ये पत्र बोस ने नेहरू के लिए बिहार के मानभूमि जिले की जीलागुड़ा पोस्ट ऑफिस से 28 मार्च 1939 को पोस्ट किया था।